بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے افغانستان میں داعش اور طالبان کی جنگ۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں طالبان اور داعش کے درمیان تصادم کی حقیقت، اس کے محرکات اور ان کے پیچھے کار فرما عوامل کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
میڈیا میں یہ خبریں وقفے وقفے سے آ رہی ہیں کہ داعش افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تازہ واقعے میں طالبان اور داعش کے عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں 12 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ کچھ علاقوں میں داعش نے اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا ہے۔ افغانستان میں داعش کا پیر جمانا طالبان کے لیے بھی تشویش کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمسایہ ممالک کے لیے بھی یہ بہت بڑی تشویش کا مسئلہ ہے۔ طالبان اور داعش نے اپریل 2015 میں ایک دوسرے کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور اسی مہینے طالبان کے ایک عسکریت پسند کو ذبح کر دیا گیا۔ سعد اماراتی نام کے اس عسکریت پسند کے قتل کی ویڈیو داعش نے یوٹیوب پر جاری کی تھی۔ 5 جولائی 2014 کو داعش کے سرغنہ ابو بکر بغدادی نے ایک فتویٰ جاری کر کے مختلف ملکوں میں سرگرم انتہا پسند تنظیموں کو داعش سے جڑ جانے کا حکم دیا تھا، لیکن القاعدہ اور طالبان نے اس فتوے کو قبول نہیں کیا۔ تاہم دونوں تنظیموں کے بہت سے عسکریت پسند داعش میں شامل ہو گئے۔ رپورٹوں کے مطابق افغانستان کے صوبے ننگرہار میں داعش خود کو مضبوط کر رہی ہے۔ داعش نے طالبان کو بھگانے کے لیے افیون کی کھیتیوں میں آگ لگانے کی اسٹریٹجی اپنائی ہے، کیونکہ افیون طالبان کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔ طالبان رہنما ملا اختر محمد منصور نے ابو بکر بغدادی کو ایک خط لکھا ہے جس میں مشترکہ دشمنوں کا ذکر کرتے ہوئے آپس میں مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ افغانستان میں داعش کی موجودگی کے تعلق سے ایک اہم واقعہ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کی روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات ہے۔ یہ ملاقات گزشتہ 24 جون کو ہوئی، جس کی تفصیلات کرملن ہاؤس سے جاری کی گئی ہیں۔ ملاقات میں افغانستان میں طالبان کی سرگرمیوں اور داعش کے بڑھتے اثر و رسوخ کے بارے میں بات ہوئی۔ روسی صدر کے مطابق افغانستان کے 34 میں سے 25 صوبوں میں داعش کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ طالبان کی سرگرمیاں تشویش کا باعث ہیں، لیکن زیادہ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ افغانستان میں داعش کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، اور آج افغانستان کے 34 میں سے 25 صوبوں میں داعش موجود ہے۔ اس ملاقات میں حامد کرزئی نے کہا کہ داعش بالکل الگ شکل کی مشکل ہے۔ یہ افغانستان کی مقامی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ باہری تنظیم ہے جسے بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ یہ تنظیم علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے افغانستان کو لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ داعش کا مسئلہ بہت حساس ہے، اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن جیسا کہ حامد کرزئی نے بھی کہا کہ اسے بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے تنظیم پر قابو پانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ حامد کرزئی کا اشارہ کن بیرونی طاقتوں کی طرف تھا، اس بارے میں انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن عراق اور شام میں اس تنظیم کے سلسلے میں امریکہ نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ حد درجہ مشکوک ہے، اور اس پر عراق اور شام کے حکام بھی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔
ناظرین، ادھر کچھ عرصے سے افغانستان میں داعش کے پہنچ جانے کی خبریں مل رہی تھیں، جس کی افغان ذرائع تردید کرتے رہے ہیں، لیکن اب داعش اور طالبان کے درمیان باقاعدہ جنگ اور تصادم شروع ہو جانے کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ننگرہار کے کچھ علاقوں پر داعش کا قبضہ ہو گیا ہے۔ افغانستان میں داعش کے اراکین باہر سے آئے ہیں، یا طالبان کا ہی ایک حصہ ہے جس نے خود کو داعش کا حصہ قرار دے دیا ہے؟ چونکہ طالبان اور داعش دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہے، دونوں کے نظریات ایک ہیں، اس لیے طالبان کے عناصر کے اپنے گروہ سے ٹوٹ کر داعش میں شمولیت کی راہ میں کوئی نظریاتی رکاوٹ نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ داعش گروہ اپنے افراد کو طالبان سے زیادہ پیسے دیتا ہے، یہ بھی داعش میں طالبان کی شمولیت کا ایک محرک ہو سکتا ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ طالبان سے جنگ کرنے والے داعش گروہ میں عرب باشندوں کو بھی دیکھا گیا ہے۔ طالبان اور داعش کی مدر آرگنائزیشن القاعدہ ہے، اور القاعدہ میں عرب اور غیر عرب دونوں طرح کے دہشت گرد موجود ہیں۔ حتیٰ بتایا جاتا ہے کہ خود طالبان میں بھی دوسری نیشنلٹی کے لوگ موجود ہیں، اس لیے افغانستان میں اگر داعش میں کچھ عرب بھی ہوں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ طالبان کے جس گروہ نے خود کو داعش ڈکلیئر کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے اپنا نام طالبان کے بجائے داعش رکھنا زیادہ مناسب کیوں سمجھا تھا؟ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں داعش کے پیچھے غیر ملکی عناصر ہیں۔ وہ غیر ملکی عناصر کون ہیں؟ وہ افغانستان میں داعش کے ذریعے کس مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ طالبان بھی تکفیری گروہ ہے اور داعش بھی تکفیری گروہ ہے، دونوں کی بنیادی آئیڈیالوجی ایک ہے، پھر ان میں لڑائی کس بات پر ہے؟ جب دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہے تو ان کی لڑائی نظریاتی تو ہے نہیں، ممکن ہے کہ مفادات کی جنگ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جنگ کے محرکات ان دونوں کے مفادات سے ماورا ہوں اور ان کا تعلق ان پردہ نشینوں سے ہو جو ان کے پیچھے کار فرما ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ افغانستان میں داعش کی حقیقت کیا ہے۔ اگر طالبان کے ہی ایک گروہ نے اپنا نام داعش رکھ لیا ہے یا داعش میں شامل ہو گیا ہے تو یہ کام اس نے خود کیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ دیگر عناصر کام کر رہے ہیں؟ ان عناصر کا تعلق افغانستان کے اندر سے ہے یا باہر سے ہے؟ افغانستان میں اس نئے گروہ کو لاجسٹک سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ اس گروہ کی مالی مدد کون کر رہا ہے؟ اور جو بیرونی یا اندرونی عناصر اس گروہ کی مالی مدد اور لاجسٹک سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ان کا ہدف کیا ہے؟ ہمارے آج کے پروگرام میں کابل سے ممتاز تجزیہ نگار ظفر مہدی، اسلام آباد سے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جاوید صدیق، اور دہلی سے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر ارشی خان حصہ لیں گے۔ کابل سے رابطہ ظفر مہدی صاحب سے برقرار ہو گیا ہے، ظفر مہدی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے، تو گفتگو کا آغاز ظفر مہدی صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ ظفر مہدی صاحب السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
مہدی صاحب، افغانستان میں داعش کی حقیقت کیا ہے؟
افغانستان میں داعش کی حقیقت جتنا بھی ہم جھٹلائیں لیکن حقیقت ہمارے سامنے بالکل ہے۔ طالبان اور داعش کے بیچ یہ محض اختلافات نہیں ہیں، کافی میڈیا رپورٹس ہیں کہ کافی ڈفرینسز ہیں ان کے بیچ میں، میرے خیال میں کوئی محض اختلافات والی بات نہیں ہے، یہ ایک کھلے عام ایک جنگ ہے، اور اس جنگ کا اعلان داعش نے کچھ مہینے قبل کیا۔ اب سوال پیدا اٹھتا ہے جب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دونوں دہشت گرد تنظیموں کے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، یہ دونوں کے مقاصد اگر ایک ہے تو اتحاد کیوں نہیں ہے دونوں کے بیچ؟ اس پہ ہر تجزیہ نگار کا اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن میرے خیال میں داعش، جیسے ہم تھوڑا ابھی پیچھے کی طرف جائیں تو داعش نے افغانستان میں پچھلے سال قدم رکھا، اور آتے ہی انہوں نے طالبان کے کافی لوکل دہشت گردوں کو اپنے ساتھ کر لیا، خاص کر مشرقی اور جنوبی افغانستان میں، ایسٹرن اینڈ ساؤدرن افغانستان میں، جہاں کے طالبان کا کافی مضبوط ہے وہ کافی وہاں پہ، اور جو کہ انہوں نے یہاں پہ لوکل طالبان کو ریکروٹ کیا وہی نہیں تھے، لیکن اگر آپ گورنمنٹ کی رپورٹس کو دیکھیں تو انہوں نے یہاں پہ کافی ازبیک، تاجک، کرگیز، چچین، ترکمن، بہت سارے ممالک سے یہاں پہ دہشت گرد ہیں جو کہ داعش سے ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور جس کی تصدیق ابھی افغانستان کی حکومت نے بھی کی، انٹیریئر منسٹر نور الحق علومی نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ کافی ملکوں سے یہاں پہ دہشت گرد ہیں اور وہ داعش کے بینر کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کافی آپریشنز بھی کافی پروونسز میں چل رہی ہے، کافی مہینوں سے یہ ریکروٹمنٹ چل رہا تھا، یہ لوکل ریکروٹمنٹ الگ الگ پروونسز میں چل رہا تھا، یہ ریکروٹمنٹ اس کا سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر طالبان کو خطرہ محسوس ہوا کیونکہ ان کی کانسٹیچوئنسی میں انہوں نے اندر داخل ہوئے، उनकी जो तालिबान के स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है काफ़ी प्रोविंस है, जैसे नंगरहार का जिक्र आपने किया, खोस्ट का है, फरा प्रोविंस है, वहाँ पे इन्होंने अपने कदम जमाए और काफ़ी लोकल तालिबान वालों को रिक्रूट किया। उसके वजह पैसा भी हो सकता है, उसका वजह ये भी हो सकता है कि वो काफ़ी काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे अब तालिबान से, कि पिछले 13 साल में जो तालिबान नहीं कर पाया उनको लगा शायद दाइश कर लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे खिलाफत होगी और अमेरिका यहाँ से बाहर होगा और बाकी चीज़ें जो है जो तालिबान नहीं कर पाया 13 साल से, उनको ये लगा शायद दाइश कर लेगा हमारे यहाँ पे। उसके बाद अभी लास्ट महीने की बात है, नंगरहार प्रोविंस में 10 तालिबान दहशतगर्दों को हला किया गया और उससे मेरे ख्याल में वही जंग की शुरुआत थी, और उसके बाद ही मीडिया में काफ़ी रिपोर्ट्स आए इसके बारे में, यहाँ पे दाइश जो है अफगानिस्तान तालिबान के साथ लड़ाई चल रही है, वो ऐलानी जंग था मेरे ख्याल में दाइश की तरफ से। और पिछले 4 महीनों में दोनों तंजीमों में आपस में लड़ाई काफ़ी बढ़ गई है, खासकर नंगरहार हेलमान प्रोविंस में। हेलमान बहुत बड़ा तालिबान का एक स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ के जो ड्रग्स है, ड्रग्स वो उनका मेन जरिया है रेवेन्यू का हेलमंद में, तो इसलिए उन्होंने हेलमंद में काफी कदम जमाए हुए हैं। वहां पे भी अब दाइश दाखिल हो गया है, फराह प्रोविंस में भी पिछले हफ्ते नंगरहार में दोनों ग्रुप्स के बीच झड़प में करीबन 12 लोग मारे गए थे दोनों ग्रुप्स में से। और अभी कुछ हफ्ते पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक नंगरहार प्रोविंस में उन्होंने कुछ पैम्फलेट बांटे थे जिसके मुताबिक कि उन्होंने कहा था कि औरतों से कहा गया था कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। अभी जो खतरा इतना बढ़ गया है कि हुकूमत भी इसका इसका अंदाजा लगा सकती है, अभी जितने इनके यहाँ मीटिंग्स होती हैं, अभी कल ही की बात है, कल अमनियत मिल्ली यहाँ अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी NDS, उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने एक नया फोर्स तैयार किया है इस खतरे से डील करने के लिए, उन्होंने एक नया स्पेशल फोर्स का यूनिट बनाया है जो खास दाइश के लिए बनाई गई है, दाइश से लड़ने के लिए बनाई गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना अभी मसला कितना बढ़ गया है, और दोनों ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें काफी सिविलियंस भी मर रहे हैं और काफी नंगरहार से काफी सिविलियंस भाग भी चुके हैं वहां से, काफी अलग अलग प्रोविंसेस में, नियर बाई प्रोविंसेस में जा चुके हैं, तो खतरा मेरे ख्याल में बहुत है। और ये जो हकीकत है जितना भी हम इसको इग्नोर करें उतना सही नहीं है, जितना हम इसको फेस करेंगे उतना ही हमारे लिए सही है।
बहुत बहुत शुक्रिया जफर मेहदी साहब। और नाज़रीन, हमारे दिल्ली स्टूडियो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सियासियात के प्रोफेसर डॉक्टर अर्शी खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, दाइश और तालिबान की अगर देखा जाए तो बुनियादी आइडियोलॉजी एक है, फिर इनमें लड़ाई किस बात की है?
वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बुनियादी आइडियोलॉजी मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ फ़र्क है, इसलिए कि तकफीरी ग्रुप में भी कई वर्जन्स हैं। कोई
जी
एक्सट्रीम तकफीरी ग्रुप है, कोई लेसर तकफीरी ग्रुप है, तो इसमें यहाँ पे आपको एक डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए कि कुछ तकफीरी हैं जो कि टॉलरेट करते हैं, तो उसमें आप तालिबान को ला सकते हैं, लेकिन तालिबान के अलावा जो दाश है, तो दाश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तालिबान का एक रिकॉर्ड रहा कि उन्होंने हुकूमत बनाई और अपने हिसाब से चलाया और अपने ही हदूद में ही वो रहे, और लेकिन दाश का जो मेन एजेंडा है वो आपके जहाँ जहाँ ये गए, फॉर एग्ज़ाम्पल लीबिया में ये एक्टिव हैं, इराक़ में इन्होंने दखल अंदाजी की है, मोसल में, सीरिया में थोड़ी बहुत जगह पे इन्होंने कब्ज़ा किया है, तो ये तीनों जगह पे जो इनका मेन स्ट्रेटजी है वो बेसिकली इनसिक्योरिटी और इनस्टेबिलिटी को परपिचुएट करना है, उसको बिल्कुल वहाँ पे जमा देना है। और आप जानते हैं कि सीरिया में अगर सबसे बड़ी चीज़ कहा जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो इनस्टेबिलिटी है। तो इनस्टेबिलिटी किसने क्रिएट किया? तो दाश ने क्रिएट किया। दाश को कौन सपोर्ट कर रहा है? बाहर में लोग हैं। कौन लोग हैं? स्क्रिप्ट राइटर हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि आपके पर्दे पे हैं, जिनको एक्टर्स बोलते हैं, और एक वो लोग हैं जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो पर्दे के पीछे हैं। तो जनरली जो आवाम है वो एक्टर को देखती है, और एक्टर को देखने के ऊपर में अपना इमेज बनाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो पर्पस है दाश को लाने का अफगानिस्तान में, वो ये है कि जो अफगानिस्तान में वहाँ पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आ रही थी दोबारा, इसलिए कि आप जानते हैं कि वहाँ पे हुकूमत चाहे जैसी भी हो वहाँ पे इस्टेब्लिश थी, तालिबान अपने हिसाब से वहाँ पे उसको रेजिस्ट कर रहे थे, और एक तरह से एक स्टेटस को या एक सिक्योरिटी सिचुएशन इस्टेब्लिश हो रही थी। लेकिन जब दाश वहाँ पे लास्ट ईयर आए आपके लेट 2014 में और अर्ली 2015 से इन्होंने जो है मारपीट शुरू की और कत्लेआम शुरू किया, और ख़ास करके आप जानते हैं कि दाश के पास बहुत सारे पैसे हैं, इनके पास नई नई गाड़ियां हैं। मैं समझता हूं कि गैरी सी श्रोइन की जो किताब है द फर्स्ट इन, उसमें जिस तरह से CIA ने मदद की थी आपके तमाम मुजाहिदीन की अफगानिस्तान में, और जिस तरह से तमाम ग्रुप्स को उन्होंने फंडिंग की और उसमें नई नई गाड़ियां आईं, मैं ये समझता हूं कि सेम सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो इसमें पीछे में लोग हैं, अब कौन लोग हैं ये तमाम दुनिया जानती है, उसमें से एक वो भी मुल्क है मगरबी एशिया में जिसके पास 400 न्यूक्लियर वेपन है, वो भी इसमें शामिल है। इसलिए कि उनका मेन मकसद है कि पूरे वेस्ट एशिया जो मुस्लिम बेल्ट है, पूरा जो वेस्ट एशिया का मुस्लिम बेल्ट है जिसमें दो बड़ी जमातें हैं आपके सुन्नियों की जमातें हैं और शियाओं की जमातें हैं, एक तो ये है इनका मेन मकसद कि विद इन सुन्नी इनको आपस में जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय फ्रॉम विद इन, और दूसरी चीज़ ये है कि विद इन शिया एंड सुन्नी, तो दो लेवल पे ये चल रहे हैं खास करके मुसलमानों के बीच में। उसके अलावा मुसलमानों के अलावा फिर क्रिश्चियंस जो मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं या यजीदी क्रिश्चियंस हैं या और भी क्रिश्चियंस हैं, उनसे इनका ये है। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा कि दाश ने कोई भी कदम ज़ायनिस के ख़िलाफ़ उठाया हो या कोई बात बोला हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पूछा जाए कि किस चीज़ में महारत हासिल है दाश को, तो ये कहा जाता है कि भाई बहुत सारे पैसे ये लेके घूमते हैं, नई नई इनके पास गाड़ियाँ हैं, हाईटेक वेपन्स इनके पास, बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन है, मतलब अब इनके दुश्मन कहाँ पर हैं उसकी ट्रैकिंग ये आराम से करते हैं, इनको खबर दी जाती है। आप जानते हैं कि ये जिस एरिया में है वहाँ पे बिल्कुल वाईफाई एरिया बनता है और तमाम इनकी फुल कनेक्टिविटी है, ये सोशल मीडिया ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, उससे लोगों को बुलाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ, इवन अलकायदा की भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि जो कि फुल्ली फॉरेन फंडेड था अलकायदा, जबकि तालिबान इंडिजिनस ग्रुप था, हालांकि फेल हुआ अपनी पॉलिसी की वजह से, लेकिन इससे भी आगे वो बढ़ गए, अलकायदा से भी आगे बढ़ गए। इसलिए कि अलकायदा में ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन था वो आपके उन मुसलमानों को जो था जो मुसलमान मुस्लिम कंट्रीज से थे, लेकिन दाश में वो मुसलमान हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं हैं, जो ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया और पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, और वहाँ से उनको कौन फैसिलिटेट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न ममालिक की जितनी भी मुखबरात एजेंसीज हैं वो बिल्कुल वहाँ वाकिफ़ होंगी कि उनको कैसे वहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क किसी को लाया जाए और गलत तरीके से लाया जाए, सही तरीके से जाने में इंसान को बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज वीज़ा बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं इसका मतलब है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रही हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, बड़े ही अच्छे नेटवर्क में जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ उनको जानती हैं, अमेरिका भी उनको जानता है, और ये तमाम लोग इनके पीछे हैं। तो दाश ओपनली पैसा बांट रहे हैं अफगानियों को। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में करप्शन का बहुत बड़ा इशू है, गरीबी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ड्रोन हमले काफ़ी हैं वहाँ पे, लोग के पास वहाँ पे जस्टिस नहीं है, इन तमाम चीज़ों से लोग परेशान हैं। तो तालिबान के जो कुछ लोग थे उनको इन्होंने कुछ स्प्रे कुछ ख़रीदा, मतलब जिसको कहा जाए सेल एंड परचेज, पैसा दे करके। लेकिन वेस्टर्न जो फ्रंट है अफगानिस्तान का, ख़ास करके ईरान के पास बॉर्डर के पास, तो जब इन्होंने ये हरकत की वहाँ पे, तो तालिबान ने इसको काउंटर किया, और फिर वहाँ पे जो लोग जो दाश में तालिबान के लोग दाश में दाखिल हो गए थे नौजवान, वो फिर वापस आ गए। तो वहाँ पे जो नौजवानों के पास से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये दाश लोग। इसी तरह से आप देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सीरिया में कुछ लोग जो वहाँ पे असद गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, नाराज़गी की वजह कुछ और हो सकती है, उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसी तरह से लीबिया में। तो ये बहुत ही वेल इन्फॉर्म ग्रुप है दाश, ये सुप्रा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं समझता हूँ कि ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं आया, और तमाम तरह की सपोर्ट है इनको, आसमानों से सपोर्ट इनको मिल रहा है, मतलब सेटेलाइट से सपोर्ट मिलता है, और सेटेलाइट में आप जानते हैं कि कौन सी कंट्रीज बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में ये कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि अफगानिस्तान में मैं आपको बताऊं कि सेम सिचुएशन 1915-1916 अमीर हबीबुल्लाह खान जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रो ब्रिटिश थे और अगर वो वक्त पे मदद करते हिंदुस्तानी मुसलमानों की तो शायद अंग्रेज़ उस वक्त हिंदुस्तान से वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बेच दिया और अमीर अमानुल्लाह खान जब आए तो फिर उन्होंने कुछ कोशिश की लेकिन वक्त काफ़ी देर हो चुका था। उसी ज़माने में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी हिंदुस्तान में 1916 के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे और पूरा ताबून इसमें मिल रहा था, तो अफगानिस्तान में कभी भी फॉरेन फोर्सेस को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये इनकी अपनी जंग है वहाँ पे और जिस तरह से पैलेस्टाइन में है, लेकिन दाश जो है ये फुल्ली फॉरेन फंडेड है और फॉरेन रिक्रूट्स हैं इसमें और ये तमाम चीज़ें एक्सपोज्ड हैं। मैं समझता हूँ कि दाश अफगानिस्तान में ये नाकामयाब होंगे इसलिए कि इनका कॉन्टैक्ट वहाँ पे अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ओपनली क्रिएटेड बाय स्क्रिप्ट राइटर्स, ये बात बिल्कुल वाज़े है जहाँ तक मेरा मुताला है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद सिद्दीक साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ तजिया निगार। जावेद सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जनाब तालिबान ने दाइश ग्रोह को ख़त लिख के मशरक़ वस्ता में उसकी दहशतगर्दी को जिहाद करार दिया था और उसकी हिमायत का बाज़ाबता ऐलान किया था, लेकिन अफगानिस्तान में दोनों आमने सामने आ गए हैं, दोनों में टकराव के असबाब क्या हो सकते हैं?
देखिए इसमें पॉसिबली जो इनकी कॉन्फ्लिक्ट या तसादुम है उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि तालिबान का एक हमेशा से एजेंडा रहा है कि हम अफगानिस्तान को लिबरेट करवाना चाहते हैं, आज़ाद करवाना चाहते हैं फॉरेन फोर्सेस से, और ये एक ऐसा नारा था जिसमें कि अफगानियों की बड़ी अक्सरियत जो थी, ख़ास तौर पर जो तालिबान के हामी थे और अफगानिस्तान को आज़ाद देखना चाहते थे, वो उनके पीछे आके खड़े हो गए और उन्होंने उनकी मदद दी। ये उनका एक मतमय नज़र है, एक नस्ब लैन है। मुल्ला उमर जो है, जो इस वक्त अमीर हैं अफगानिस्तान के तालिबान के, वो कई मरतबा कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो फॉरेन फोर्सेस से है, अमरीका के साथ है, नेटो की फोर्सेस के साथ है, और हम चाहते हैं कि ये फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान से चली जाएं, और अगर वो चली जाएं तो हम फिर आपस में बैठ कर, यानी जो हुकूमत में इस वक्त अफगानी है उनके साथ बैठ कर हम अपने मामला तय कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक जिरगा सिस्टम है और लोया जिरगा के ज़रिए हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन दाइश जो है उसका एजेंडा तो बहुत और है, वो तो एक उनका एक पूरा वर्ल्ड व्यू है, वो चाह रहे हैं कि उनका जो असर रसूख है वो एक मुल्क में नहीं कई ममालिक में हो, और आपने देखा कि शाम में, इराक में और मुख्तलिफ मुल्कों में वो इस वक्त जो है बरसरे पैकार हैं, उनको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी की वारदातें की हैं, लोगों का कत्ल आम किया है, और वो बड़े सफाक किस्म के लोग हैं, और उसके अलावा वो इस लड़ाई को फैलाना चाहते हैं अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि तालिबान जो हैं वो उनके सब सर्वियंट या उनके मातहत हो जाए, और मैं समझता हूँ कि तालिबान कभी ये तस्लीम नहीं करेंगे। तालिबान की एक बहुत ही तवील जद्दोजहद है, उन्होंने पहले सोवियत फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी यहाँ पे और उन्होंने सोवियत फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकाला, और फिर उसके बाद 9/11 हुआ और 9/11 के बाद वो अमेरिका और नेटो की जो फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में इस वक्त उनके साथ तसादुम कर रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी कुर्बानियाँ यानी उन्होंने दी हैं जानी एतबार से। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एजेंडाज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दाइश में जो लोग हैं वो उनका एक एजेंडा ये है कि सारी इस्लामी दुनिया को डिस्टेबलाइज किया जाए और एक अपना फिलॉसफी जो उनकी अपना नुक्ता नज़र है, अपना जो उनका प्रोग्राम है और मिशन है उसको आगे बढ़ाएं, और वो बहुत ही सफाक लोग हैं, उनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, उन्होंने तेल की बाज़ ममालिक के अंदर इस्लामी मुल्कों के अंदर तेल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तेल के ज़खायर पर उनसे बेपनाह पैसा उन्होंने हासिल किया, उन्होंने और भी बहुत से जराए जो हैं उनसे पैसा उनको मिल रहा है, ये भी कहा जाता है कि इनको अमेरिका और मगरबी मालिक के बाज तंजीमों की जो है हमायत हासिल है, वो इनको टेक्नोलॉजी फराहम कर रही हैं, वसाइल फराहम कर रहे हैं, और इस लिहाज से देखा जाए तो वो उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, उनका जो ऑपरेशन का एरिया है बहुत वसी है, और इसलिए उनका और एक तालिबान के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट या एक तसादम या एक मुखासमत मौजूद है। तालिबान जो है उनका जो ऑपरेशन का एरिया है या जहां वो सरगर्म अमल हैं वो अफगानिस्तान है, फाटा पाकिस्तान की तरफ जो हमारा इलाका है फाटा का, और पाकिस्तानी तालिबान जो है वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो अफगानिस्तान से निकलकर या फाटा या इस इलाके से निकलकर किसी तीसरे मुल्क में चले जाए और वहाँ जाके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो नुक्ता नज़र उनका है वो या जो खिलाफत वो कायम करना चाहते हैं दाइश वाले, वो उस किस्म की खिलाफत के निज़ाम हुकूमत का तसव्वुर जो है वो किसी पर मुसल्लत करना चाहते हों अगर, तो अफगानिस्तान के लोग शायद इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तो दाइश जो है वो कोशिश कर रही है पैर जमाने की, और उसकी कोशिश है कि लीडरशिप जो है इस सारे जो अमल है इसमें इसकी लीडरशिप या क़ियादत जो है वो तालिबान से छीन ली जाए और दाइश का जो एजेंडा है उसको सुप्रीम एजेंडा तस्लीम कर लिया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके दरमियान ये एक कन्फ्लिक्ट है और तालिबान और उनके दरमियान कभी नहीं बनेगी यहाँ पे, तो तालिबान का जो एजेंडा है जो अब तक वो इसका प्रचार करते रहे वो यही है कि हम अफगानिस्तान को गैर मुल्की फोर्सेस से निजात दिलाना चाहते हैं, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, और बसा अवकात आपने देखा कि पिछले चंद सालों में जो मौजूदा अफगान हुकूमत है उनके और तालिबान के दरमियान बातचीत भी होती रही है, पस पर्दा बेशुमार कोशिशें हो चुकी हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई रास्ता निकले बातचीत का, और अफगानिस्तान का जो मामला है जो इस वक्त वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट या तसादम जारी है उसको ख़त्म किया जाए बातचीत के जरिए मुज़ाकरात के जरिए, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके दरमियान एक चपकलश जो है जारी रहेगी और तालिबान को कभी भी ये कबूल नहीं होगा कि उनके ऊपर एक ऊपर से एक और एजेंडा जो है उनके ऊपर मुसल्लत किया जाए, इसलिए इनके दरमियान ये बुनियादी इख्तलाफ है, और मुल्ला उमर जो है और दूसरे जो लीडर इस वक्त अफगान तालिबान को लीड कर रहे हैं वो दाइश की सुपरमेसी या उसकी जो बालादस्ती है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और दाइश का जो अंदाज है वो भी बहुत ही खौफनाक है, और वो लोगों को मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों को बेपनाह नुकसान पहुंचा रहे हैं। तालिबान का ये है कि कम अज़ कम अफगान तालिबान जो है उन्होंने ज़्यादातर जो हमले किए हैं अब तक वो फॉरेन फोर्सेस पे किए हैं या उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे किए हैं, उन्होंने आम लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। इसलिए मैं समझता हूँ कि दाइश के नज़दीक कोई अखलाकियात नहीं है, कोई उनके नज़दीक ये नहीं है कि किसी मुसलमान को मारना, बेगुनाह मुसलमान को और मासूम मुसलमान को मारना जो है वो इस्लाम की ज़बान में ये है कि जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, तो इनके नज़दीक कत्ल वारत और लोगों के सर कलम करना और ख़वातीन को मारना, बच्चों को मारना, ये सारी चीज़ें इनके लिए तो जायज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एजेंडा जो है बाकी जो तंजीमें हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं दुनिया में और वो सारी की सारी ये दावा करती हैं कि वो इस्लाम की बालादस्ती के लिए, इस्लामी निज़ाम के लिए काम कर रही हैं, उनको शायद इस एजेंडे से इख्तलाफ होगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद गुफ्तगु आगे बढ़ाएंगे।
We'll be right back.
جی ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں افغانستان میں داعش نے مشرق وسطی میں تہلکہ مچانے کے بعد لیبیا میں، شام میں اور عراق میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے کے بعد اور اپنی بہیمانہ کاروائیوں سے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچانے کے بعد اب افغانستان میں قدم رکھا ہے. افغانستان میں کافی عرصے سے داعش کے آنے کی خبریں مل رہی تھیں لیکن افغان ذرائع اس کی تردید کرتے رہے ہیں، افغان حکومت بھی اس کی تردید کرتی رہی ہے، لیکن اب افغان حکومت نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ داعش افغانستان میں داخل ہو چکی ہے اور داعش اور طالبان کے درمیان باضابطہ جنگ بھی شروع ہو گئی ہے. بہرحال افغانستان میں ممکن ہے کہ داعش کو زیادہ کامیابی نہ ملے. ایک تو یہ کہ افغانستان کے اندر اس کو حکومت سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور طالبان سے جو باضابطہ جنگ شروع ہوئی ہے تو طالبان بھی اس کو بہرحال مقابلہ دے سکتے ہیں، فی الحال تو مقابلہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داعش افغانستان میں پہنچے کیسے؟ یہ داعش کے افراد جو افغانستان میں سرگرم ہیں، یہ افغانستان کے اندر سے ہی ابھر کر سامنے آئے ہیں؟ طالبان کا ہی ایک گروہ ہے جو جس نے اپنے آپ کو داعش ڈکلیئر کر دیا ہے اور اب داعش کے طرز پر اس نے وہاں پر دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے کا پروگرام بنایا ہے، یا کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں اور اندر سے ان کو سپورٹ ملی ہے؟ اس کے لیے جی جی چلتے ہیں. جی ظفر مہدی صاحب سے ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، دہلی چلتے ہیں. خان صاحب، دیکھیے داعش کا کے لیے آپ نے اسکرپٹ رائٹرز کی بات کی، تو داعش کو وجود میں لانے میں شام میں جو داعش کو کا فتنہ کھڑا کیا گیا تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. شام اسرائیل کے مقابلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا تو اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا تھا، اسرائیل کے مقابلے میں ایک محاذ کو گرانا تھا. عراق میں ایک تو تیل کی دولت پر قبضہ کرنا تھا، دوسرے عراق میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کافی عرصے سے کردستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں ناکام ہو رہا تھا. داعش کے آنے کی وجہ سے شاید ممکن ہے کہ اس منصوبے میں بھی آسانی پیدا ہو جائے. لیبیا میں اگر دیکھیں تو لیبیا میں جو تیل کے ذخائر ہیں اس پر داعش کا قبضہ ہے، عراق میں بھی کچھ تیل کے ذخائر پر قبضہ ہے. افغانستان میں ان کے اہداف کیا ہیں؟ اگر افغانستان میں داعش کو کچھ بیرونی عناصر نے، جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں، وہ افغانستان میں داعش کو لانا چاہ رہے ہیں تو افغانستان میں ہدف کیا ہے؟
دیکھیے افغانستان ایک کافی اسٹریٹجک کنٹری ہے. آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی وجہ سے اور افغانستان کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے برٹش امپائر اپنی وجود کو کافی لمبے سمے وقت تک قائم رکھ سکا اور وہاں پہ جو بھی وہاں پہ امیر ہوتے تھے ان سے بڑے اچھے مراسم ہوتے تھے. تو کافی امپورٹنٹ کنٹری ہے، اسٹریٹجک کنٹری ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں اگر داعش آتا ہے اور اس طرف عراق میں اگر داعش ہے تو ایک دونوں اس میں ایران کو سینڈوچ کیا جا رہا ہے. مطلب ایران کے لیے، ایران کو خطرہ پہنچانے کے لیے یا ایران کو ایک وارننگ دینے کے لیے ایک طرف عراق میں وہ آپریٹو ہیں، آپریشنل ہیں، دوسری طرف وہ افغانستان میں آپریشنل ہیں. تو اسے ایک ایران ایک ٹارگٹ بن رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو دو بڑے امپورٹنٹ کنٹری ہیں، خاص کر کے جو سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں، سلامتی کونسل کے، آپ کے چین اور روس، یہ دونوں بھی داعش کی موجودگی کی وجہ سے خاص کر کے افغانستان میں دونوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تیسری چیز جو ہے خود پاکستان کے لیے اور ہندوستان کے لیے، اس لیے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کو وہ تحریک طالبان پاکستان سے ہے. تحریک طالبان پاکستان کا کے بڑے اچھے مراسم آپ کے داعش سے ہیں. تو ایک طرف داعش کی موجودگی افغانستان میں وہ پاکستان گورنمنٹ کو بھی تھریٹ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہندوستان کے جو کی جو حکومت ہے ان کو بھی وہ ایک طرح سے تھریٹ دے رہی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں مسلمانوں کی تعداد اگر ورلڈ میں دیکھا جائے तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन में मुसलमानों की तादाद देखा जाए उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आपके साउथ एशिया का है, और साउथ एशिया में अफगानिस्तान भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। इसलिए अफगानिस्तान में अगर कोई एक एक्टिविटी हो रही है जिसके बेसिस पे इस्लाम को एक बदनाम किया जा रहा है या उसकी गलत इमेज को पेश किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग है, आपके स्क्रिप्ट राइटर की बहुत बड़ी मार्केटिंग है कि किस तरह से साउथ एशियन मुसलमानों को दहशतगर्दी के साए में ला करके उनको प्रोवोक किया जाए, और इसलिए कि पूरे साउथ एशिया में जो मुसलमानों की सिचुएशन है वो गरीब लोग हैं, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, इन्होंने वायलेंस को नहीं अपनाया सिवाय आपके कश्मीर को देखते हुए, उसके अलावा कहीं इन्होंने वायलेंस को नहीं अपनाया, तो इनको कैसे प्रोवोक किया जाए, इनको कैसे इन मुसलमानों को अपने ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इनको लाया जाए और आपस में तसादुम पैदा किया जाए। तो एक बहुत बड़ा मतलब अफगानिस्तान में दाश को लाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा उन लोगों का होगा जो अपनी मोनोपोली को बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि साउथ एशिया में ब्रिक्स जो हैं आपके ब्राज़ील और चाइना रशिया इंडिया ये लोग एक उभर रहे हैं एक बहुत बड़ी तंजीम बन करके। रशिया ने भी काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टैंड लिया है आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये एक ऐसा फोर्स है जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, जो इंटरनेशनल लॉ को प्रिजर्व करना चाहता है, जो यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशनल जो चीज़ें हैं उसको वो मेंटेन करना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या उसको किसको बोलते हैं मतलब क्या कहा जाए चीज़ों को पूरी तरह से चेंज करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है दाश का कि किस तरह रिविजनिज्म किस तरह से इन चीज़ों को हटा करके चाइना को भी उनके रोल को कमज़ोर किया जाए, खास एक मिनट का रिलेशन जो मुसलमानों से हैं उनको ख़राब किया जाए, रशिया के रिलेशन को ख़राब किया जाए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि जितना ख़तरा दाश ने आपके सीरिया में दिया है मुसलमानों को उससे ज़्यादा ख़तरा हिंदुस्तान अफगानिस्तान में दिया है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मेहदी साहब से रابطہ हमारा बरकरार हो गया है। ज़फ़र मेहदी साहब, हमारे पास 3-3.5 मिनट का वक्त रह गया है। अफ़गान दाइश तालिबान से ही टूट के बना है या तालिबान के मुकाबले पर एक नया ग्रोह तैयार किया गया है?
देखिए, अगर आपने अभी देखा होगा, अभी खत लिखा था तालिबान ने दाइश के नाम पे, उसमें साफ से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चाहे पहले इनकी इत्तेफाक था लेकिन अब ये एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान में दो फ्लैग नहीं हो सकते, जिसका मतलब है कि दोनों तंजीमें मुतहिद नहीं हो सकती है। और उसके जवाब में दाइश ने नंगरहार में लोगों से कहा कि मुल्ला उमर को मार दिया जाए क्योंकि खलीफा सिर्फ एक हो सकता है और वो है बगदादी उनके हिसाब से। और तालिबान ने कहा हम बगदादी को नहीं मानते, उन्होंने मना कर दिया उनको उसको खलीफा मानने के लिए। और दाइश ने मुल्ला उमर को अमीर अल मोमिनीन जो उसको लकब है उससे मानने के लिए इनकार कर दिया। और काफ़ी तालिबान के मेंबर्स जिन्होंने अभी दाइश ज्वाइन कर लिया ना, उन्होंने उनको लगता है कि दाइश हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। नंगरहार में इस वक्त 6 डिस्ट्रिक्ट दाइश के नाम हो चुकी हैं और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट अभी जो वहाँ पर जंग चल रही है। तो इसका अगर ये ख्याल कोई तस्वर ये है कि ये मिलेंगे इतिहाद होगा या इनके बीच में कोई जो डिफरेंसेस है वो शॉर्ट आउट होंगी, वो मेरे ख्याल में नहीं होने वाला इधर यहाँ पे। चाहे ये पहले जब इराक और सीरिया में जंग चल रहा था तो तालिबान ने उनको एंडोर्स किया था वहाँ पे, जब अपने यहाँ की बात आ गई अफगानिस्तान की बात आ गई तो उनको सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, उनको डोमिनेशन जो डोमिनेंस है यहाँ पे उसको थ्रेट फील हो रहा है, उनको मोनोपोली जो इनके यहाँ पे है तालिबान की उसको थ्रेट फील हो गया उनको, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे दाइश नहीं आ सकती, यहाँ हमारा राज चल रहा है तो हमारा ही राज चलना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अमरुल्ला साले जो NDS के साबिक चीफ थे उनका मानना है कि दाइश जो सीरिया इराक में कर रही है या कर रही थी वही तालिबान यहाँ 20 साल से कर रही है। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों के जो है इतिहाद में होना बहुत ही मुश्किल क्या बिल्कुल नामुमकिन है।
ये अफगान दाइश की माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट कहाँ से हो रही है? एक मिनट का वक्त है हमारे पास।
देखिए आपको पता है कि दाइश को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, ये कोई इसमें कोई उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। ये सऊदी से आ रही है, ये कतर से आ रही है, काफी सारे जो अरब ममालिक है जिनका इसमें इंटरेस्ट है, उनका ये भी मकसद है कि अगर दाइश यहाँ अफगानिस्तान में कामयाब हो जाएगी तो बॉर्डर इसका ईरान के साथ मिला हुआ है, और उनको वहां पे डिस्टेबलाइजेशन चाहिए, उनको वहां पे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। और इसका मेरे ख्याल में इस वक्त दाइश बहुत बड़ा खतरा न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए है बल्कि पूरे रीजन के लिए है, जिसमें ईरान भी आता है, जिसमें इंडिया भी आता है, जिसमें पाकिस्तान और बाकी ममालिक भी आते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जफर मेहती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम डॉक्टर अर्शी खान और जावेद सिद्दीक साहब के भी शुक्रगुजार हैं। तीनों तजिया निगारों के ख्याल आपने मुलाहजा फरमाए। बहरहाल दाइश दहशतगर्द ग्रोह अफगानिस्तान में पहुंच गया है, और अफगानिस्तान में कामयाब होता है या नाकाम होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या दाइश की सपोर्ट वही ग्रोह कर रहा है जिसने अब तक तालिबान की सपोर्ट की है, या कोई, अब इसका मतलब यह है कि तालिबान से उनके मफादात जो हैं वो अब पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो दाइश को लाए हैं अफगानिस्तान में। प्रोग्राम के बारे में हमें नाज़रीन की राय का भी इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।